بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ نساء کی 58 اور 59 آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری شہاد محمد انور نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ كان سميعا بصيرا۔
الله جميل۔
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله اللہ العلی العظیم۔
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। निसंदेह ईश्वर तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को उनके मालिकों को लौटा दो, और जब कभी लोगों के बीच फैसला करो तो न्याय से फैसला करो। निसंदेह ईश्वर तुम्हें अच्छे उपदेश देता है, निश्चित रूप से वो सुनने और देखने वाला है। हे ईमान वालो, ईश्वर का आज्ञा पालन करो तथा पैगंबर और स्वयं तुम में से ईश्वर द्वारा निर्धारित लोगों का आज्ञा पालन करो। यदि किसी बात में तुम में विवाद हो जाए तो उसे ईश्वर की किताब और पैगंबर की ओर पलटाओ, यदि तुम ईश्वर और प्रलय पर ईमान रखते हो। निसंदेह विवादों को समाप्त करने के लिए ये पद्धति बेहतर है और इसका अंत अधिक भला है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज सोमवार है, खुर्दाद की 30, जून की 20 और ज़िलक़ादा की 20 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम आप नोट कर लें। सबसे पहले सदा की भांति आप देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण, और सभा का अंतिम और दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा सेहत का राज। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे में आतंकवादी हमला करने वाले को आज मृत्यु दंड दे दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ सुधार आरंभ में खराब लगते हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार भेजकर अमेरिका अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। इथियोपिया में 230 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे में आतंकवादी कार्रवाई के जिम्मेदार को फांसी दे दी गई। ईरान के खुरासान रजवी प्रांत के चीफ जस्टिस ने कहा है कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे में आतंकवादी कार्रवाई के जिम्मेदार को आज सुबह पवित्र नगर मशहद में फांसी दे दी गई। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार चीफ जस्टिस गुलाम अली सादकी ने कहा कि काफी जांच पड़ताल के बाद मोहम्मद ताहिर के बेटे अब्दुल लतीफ मुरादी को दोषी पाया गया। उन्होंने कहा कि अदालत में खुली सुनवाई हुई और इस सुनवाई में शहीदों के परिजन उनके वकील मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आरोपी के भी वकील मौजूद थे और उन्होंने अपने मुवक्किल का बचाव किया। खुरासान रजवी प्रांत के चीफ जस्टिस ने कहा कि आज पवित्र नगर मशहद के वकीलाबाद क्षेत्र की जेल में अब्दुल लतीफ को मृत्युदंड दे दिया गया। ज्ञात रहे कि जारी वर्ष के अप्रैल महीने की 3 तारीख को और रमजान महीने के पवित्र महीने में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे के प्रांगण में अब्दुल लतीफ नाम के व्यक्ति ने 3 धर्मगुरुओं पर चाकू से हमला किया था, जिसमें एक धर्मगुरु घटना स्थल पर ही शहीद हो गया था, जबकि दूसरा अस्पताल में शहीद और तीसरा घायल हो गया था। इस घटना के बाद हरम के कर्मचारियों ने हत्यारे को गिरफ्तार करके सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया था।
भारतीय सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ फैसले और सुधार भले ही शुरुआत में खराब लगते हैं, लेकिन लंबे वक्त में उनसे देश को फायदा होता है। सूत्रों का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी का संबंध सेना में भर्ती को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों से है। बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और एमपी में समेत देश के कई राज्यों में युवा इसका विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कई विकास योजनाओं की लॉन्चिंग के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कई फैसले और सुधार तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में इसके लाभ देश अनुभव करता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे कई सेक्टर्स को देश के युवाओं के लिए खोल दिया है, जिनमें दशकों तक सरकार का ही एकाधिकार था। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, उनमें अपने विजन और प्रतिभा को टेस्ट करें। हम दुनिया के साथ तभी मुकाबला कर पाएंगे जब सभी को समान अवसर दिए जाएं।
ममता बनर्जी ने कहा है कि अग्निपथ योजना के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सेना तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि विजय वर्गी के बयान से लगता है कि इन्हें कार्यालय में वॉचमैन बनाया जाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत भाजपा अपनी सशस्त्र सेना तैयार कर रही है। टीएमसी चीफ ने कहा कि ये अग्निवीर 4 साल के बाद क्या करेंगे। भाजपा युवाओं के हाथ में हथियार थमाना चाहती है। ममता बनर्जी ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार किया। विजयवर्गीय ने कहा था कि भाजपा कार्यालयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी देते वक्त अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। ममता बनर्जी ने पूछा है कि क्या भाजपा अग्निवीरों को अपने कार्यालय में वॉचमैन बनाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले जनता दल सेकुलर के नेता HD कुमारस्वामी ने भी अग्निपथ योजना को RSS का प्लान बताया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस बात की तैयारी कर रहा है कि अग्निपथ योजना से निकलने वाले 10 लाख लोगों में से 75% को वे पूरे देश में फैला देंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि बार बार नौकरी की छुट्टी उम्मीद दिलाकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया है। राहुल गांधी के अनुसार 8 वर्षों में 16 करोड़ नौकरियां दी जानी थी, किंतु देश के युवाओं को केवल पकौड़ा तलने का ही ज्ञान परोसा गया। राहुल गांधी का कहना है कि देश के वर्तमान स्थिति के जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजे संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि इस समय देश के युवा आक्रोशित हैं, जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर अग्निपथ योजना के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले युवाओं के प्रति एकजुटता प्रकट करने के उद्देश्य से कांग्रेस के सांसद और बड़े नेता जंतर मंतर पर सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। ज्ञात रहे कि भारत की केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए पेश की गई अग्निपथ योजना के विरुद्ध भारत के कई राज्यों में हो रहे जबरदस्त प्रदर्शनों के बीच इसी योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले जवानों के लिए रक्षा मंत्रालय और अर्धसैनिक बलों की नौकरियों में 10% आरक्षण सहित कई अन्य प्रोत्साहनों की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में नई भर्ती के लिए 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। केंद्रीय सरकार की इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 साल के लिए सेना के किसी भी अंग में भर्ती किया जाएगा। इसके लिए आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 21 साल तक निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में विरोध के कारण बढ़ाया गया। इन युवाओं को पहले साल हर महीने 30,000 रुपये वेतन के रूप में मिलेंगे। ये वेतन प्रतिवर्ष बढ़ता रहेगा और चौथे साल बढ़कर 40,000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। 4 वर्षों के बाद सेना के इन जवानों को नौकरी की समाप्ति पर कोई पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। इस योजना से युवा खुश नहीं हैं और वे इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 9 लोगों का शव घर में पाया गया। ये घटना आज दोपहर की बताई जा रही है और पुलिस ने आशंका जताई है कि कर्ज चुकाने के तनाव को लेकर लोगों ने आत्महत्या की है। सांगली के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में सोमवार को ही एक परिवार के 9 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।
रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन को हथियार भेजकर भी अमेरिका अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सरगई लावरोफ ने अमरीका और पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन के लिए आधुनिक हथियारों की सप्लाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए भेजे जाने वाले अत्याधुनिक हथियार भी अमरीका को उसके लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा भी कह चुके हैं कि यूक्रेन के लिए अमरीका का हथियारों का नया पैकेज न केवल पश्चिम के लिए बल्कि स्वयं यूक्रेन के लिए भी हानिकारक है। यूक्रेन के संदर्भ में नाटो के महासचिव ने गुरुवार को कहा था कि कीव को हथियार देकर रूस के मुकाबले में यूक्रेन को सुरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। ज्ञात रहे कि यूक्रेन युद्ध के आरंभ होने के 4 महीनों के बाद रूस के हमले यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई और राजनीतिक, सैनिक तथा सामाजिक क्षेत्र में इस युद्ध के पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है।
अफ्रीकी देश इथियोपिया में हत्या के दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है। ओरोमिया इलाके में रविवार की रात अम्हारा जनजाति के करीब 250 लोगों की हत्या कर दी गई। ये हमला देश के ओरोमिया गांव में हुआ है। आशंका है कि विद्रोही गुट ओरोमो लिबरेशन आर्मी OLA ने इस नृशंस वारदात को अंजाम दिया। इथियोपिया में पिछले कुछ सालों में जनजातीय तनाव की यह सबसे बड़ी खतरनाक घटना है।
दो विश्व युद्धों का दंश झेल चुकी दुनिया को ब्रिटेन के कमांडर इन चीफ ने तीसरे महायुद्ध की खुशखबरी सुनाई है। ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ ने इस देश की सेनाओं को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। डेली मेल के अनुसार सर पैट्रिक सैंडर्स ने कहा है कि ब्रिटेन की सेनाओं को तीसरे महायुद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। वे पिछले सप्ताह ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के पद पर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन में रूस की कार्रवाई ने विश्व में अस्थिरता पैदा कर दी है।
और अंत में ये समाचार कि अमेरिका में हजारों लोगों ने इस देश में बढ़ती महंगाई और सरकार की युद्ध प्रेमी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए। अमेरिका के विभिन्न राज्यों के हजारों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के साथ राजधानी वॉशिंगटन DC में महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए सरकार से निर्धन परिवारों की सहायता की मांग की। इन अमेरिकी प्रदर्शनकर्ताओं ने सरकार की युद्धोन्मादी नीति और सेना में व्यापक स्तर पर पूंजी निवेश की आलोचना की। उनका कहना था कि सरकार सेना के लिए बड़े बजट में पैसा लगाने के बजाय अमेरिकी समाज के गरीबों के लिए काम करे। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता से मुलाकात की है। जायजा ले रहे हैं कायम रिजवी।
कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कल शाम तेहरान में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता से भेंट की। इस मुलाकात में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने दोनों देशों के संबंधों में विस्तार के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में समन्वय और सहयोग पर बल दिया। वरिष्ठ नेता ने कहा कि द्विपक्षीय समझौतों को लागू करने के लिए दोनों पक्षों को लगातार प्रयास करने चाहिए। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने ईरान व कजाकिस्तान के गहरे ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों की ओर संकेत करते हुए अनेक मैदानों में दोनों देशों के बीच सहयोग को पहले से ज्यादा बढ़ाने पर बल दिया। अपने संबोधन के दूसरे भाग में वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमें मुद्दों पर अधिक ध्यान देते हुए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अमरीकी और पश्चिमी दोनों ही विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रभाव बढ़ाने में लगे हुए हैं। वे विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव विस्तृत करने तथा क्षेत्रीय देशों की स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का संकेत हालिया अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों की ओर था। पश्चिमी जगत के सर्वे सर्वा के रूप में अमेरिका का मुख्य उद्देश्य दूसरे देशों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप करना है, विशेष रूप से विश्व के स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाकर अमेरिका उन देशों की नीतियों को अपने हित में मोड़ना चाहता है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने कहा कि हमको मामलों पर गहराई से नजर रखते हुए उनकी समीक्षा करनी चाहिए और साथ ही में पूरी तरह चौकन्ना रहने की भी जरूरत है, क्योंकि अमरीकी और पश्चिमी हमेशा ही पूर्वी और पश्चिम एशिया सहित अनेक इलाकों में अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाते रहते हैं। वे विभिन्न देशों की स्वाधीनता व संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद वहां पर 15 गणराज्यों का गठन हुआ तो अमेरिका और पश्चिम ने केंद्रीय एशिया की ओर अपने ध्यान को अधिक केंद्रित किया। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के बहाने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और फिर केंद्रीय एशिया के किर्गिजिस्तान तथा उज्बेकिस्तान जैसे देशों में अपनी सैन्य छावनियां बनाई, लेकिन अमेरिका के क्रियाकलापों के कारण मेजबान देशों ने अपने यहां से अमरीकी सैन्य छावनियों को बंद करवा दिया। वर्तमान समय में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश नेटो में यूक्रेन की सदस्यता दिलवाने के बहाने पूर्वी यूरोप में नेटो का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहते हैं, इसीलिए वे हथियार भेजकर यूक्रेन युद्ध को रुकने नहीं दे रहे हैं। इस बारे में वरिष्ठ नेता कहते हैं कि यूक्रेन संकट के संदर्भ में मुख्य समस्या यह है कि पश्चिमी देश नेटो का विस्तार करना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो कहीं भी अपने प्रभाव का विस्तार करने में बिल्कुल भी संकोच से काम नहीं लेते।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
वाशिंगटन में हजारों लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन में भाग लिया है। पेश है एक रिपोर्ट रविश जैदी की जबानी।
अमेरिका भर के सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक विशाल रैली निकालकर मांग की है कि सरकार दुनिया भर में अशांति फैलाने के बजाय अपने देश के गरीब परिवारों की ओर ध्यान दे। एक और अमरीका जो दुनिया भर के देशों के आंतरिक मामलों को लेकर अन्य मामलों में भी हस्तक्षेप करता है और अशांति व स्थिरता का कारण बनता है, वहीं खुद अमेरिका अपने देश के खराब होते हालात पर ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन बढ़ती महंगाई, हर दिन होती हत्याएं और बढ़ती गरीबी से अमेरिकी जनता को बचाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। दूसरे देशों के छोटे से छोटे मामलों में हस्तक्षेप करने वाली अमेरिकी सरकार अपने ही देश के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ भी करने में असमर्थ नजर आ रही है। यही कारण है कि पूरे अमेरिका में हजारों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर एकत्रित हुए हैं। इन सभी लोगों की मांग यही है कि देश की सरकार दुनिया भर में मानवाधिकार की बात करने से पहले देश के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित न रखे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अमेरिका में बढ़ती महंगाई, हर दिन गन कल्चर की वजह से होती हत्याएं और बेरोजगार होते लोगों की ओर सरकार से ध्यान देने की मांग की है।
I am here because I believe that the number of poor people in this country is wrong, the people who are suffering is wrong, the amount that we spend on the military besides serving people is wrong.
रैली में शामिल एक महिला का कहना है कि देश में लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी अपने चरम पर पहुंच रही है, बेरोजगार युवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन देश की सरकार इस ओर ध्यान देने के बजाय युद्ध और सैन्य उपकरणों की ओर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है. रैली में शामिल एक अन्य व्यक्ति का कहना है कि मुझे विश्वास है कि ये विशाल रैली लोगों को देश की सरकारों की युद्ध उन्मादी नीतियों के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी. अमरीकी लोग बदलाव लाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दें. जनता ही वो ताकत है जो इन राजनीतिक पार्टियों को आम लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी. हमारे देश में बहुत धन संपत्ति है, लेकिन बुनियादी जरूरतों को जिस ईमानदारी से पूरा किया जाना चाहिए वो बहुत ही कम है. रैली में शामिल नफूरा नामक सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को अभी भी खाद्य आपूर्ति की समस्या है और उनके पास अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं है. हम यहाँ गरीब लोगों के लिए एकत्रित हुए हैं और जब तक उनकी पीड़ा बनी रहेगी हमारे प्रयास जारी रहेंगे. कुल मिलाकर वाशिंगटन डीसी में होने वाली सामाजिक कार्यकर्ताओं की विशाल रैली ने अमेरिका के उन सभी दावों की पोल खोल दी है जिसमें वो दावा करता है कि अमेरिका में सब कुछ ठीक है, ना वहाँ बेरोजगारी है, ना भुखमरी है और ना ही हिंसा. जबकि अगर जानकारों की माने तो इस समय अमेरिका में गन कल्चर की वजह से 24 घंटों के भीतर सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, तो बेरोजगारी भी कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रही है. तो वहीं महंगाई ने तो इस देश के लोगों की कमर तोड़ दी है. लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका दुनिया भर में अशांति व स्थिरता की आग फैलाने के अपने मुख्य काम में लगा हुआ है, जबकि अपने जलते हुए आशियाने पर उसकी नजर नहीं जा रही है.
और अब रुख करते हैं भारत का. भारत में मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ व्यापक विरोध जारी है. ब्यौरा दे रहे हैं दिल्ली से शमशाद काजमी.
भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में जोरदार विरोध हो रहा है. लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन कई राज्यों में अब तक हिंसक रूप भी धारण करते नजर आ रहे हैं. इसी मुद्दे को लेकर आज कई संगठनों द्वारा भारत बंद का भी आह्वान किया गया था, जिसे देखते हुए देश के कई राज्यों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी. इस योजना को लेकर जहां केंद्र सरकार झुकती नजर नहीं आ रही है, वहीं देश के युवाओं के अतिरिक्त कई राजनीतिक दल भी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं. कई विपक्षी दलों ने युवाओं के भारत बंद का समर्थन किया है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जहां एक ओर नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले में राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आज चौथे दिन पूछताछ किए जाने के विरुद्ध सत्याग्रह कर रही है, वहीं दूसरी ओर सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का भी विरोध कर रही है. कांग्रेसी नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा,
युवा मेहनत कर रहा था, तैयारी कर रहा था कि मैं फौज में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा, उसके ख्वाबों को, उनके सपनों को अग्निपथ पे डाल के जलाकर खाक कर दिया.
उक्त दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. कांग्रेसी नेता कन्हैया कुमार ने युवाओं से शांतिपूर्ण रूप से अपना आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया.
हम सबसे पहले नौजवानों को ये कह रहे हैं कि आप अपनी मांग को लेकर आंदोलन कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए.
बताया जाता है कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल आज शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट करेगा और अग्निपथ योजना वापस लिए जाने की उनसे मांग करेगा. अग्निपथ योजना के विरुद्ध हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और आज के बंद को देखते हुए 181 मेल एक्सप्रेस और 348 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को कठिनाइयों का सामना है. अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवा संगठनों ने दिल्ली कूच की बात कही थी, जिसे देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और वाहनों की जांच के कारण दिल्ली के कई क्षेत्रों में सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अभी आपने सुना दैनिक कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा और अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे ईरान के ध्रुव पर तेज गति से जारी कूटनीतिक गतिविधियों की। हालिया समय में देखने में आ रहा है कि तेहरान में अधिकारी बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि ईरान की कूटनीति ने नई रफ्तार पकड़ ली है। पिछले दिनों विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने भारत का महत्वपूर्ण दौरा किया, जिसमें व्यापक स्तर पर वार्ताएं और मुलाकातें हुई, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने तेहरान की यात्रा की और बेहद गर्मजोशी के माहौल में अंजाम पाने वाली इस यात्रा में महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादोरो ने भी तेहरान का दौरा किया, जिसमें 20 वर्षीय सहयोग के दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच लंबे समय से बहुत अच्छा सहयोग हो रहा है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्दी मोहम्मदोव ने भी तेहरान की दो दिवसीय यात्रा की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि आपसी सहयोग को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए। इस बात पर भी दोनों देशों की खास तवज्जो रही कि आपसी सहयोग और रिश्तों के कुछ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विरोधी हैं, लेकिन पुख्ता इरादे से रुकावटों को दूर किया जाए। एक नजर इन दौरों के कुछ ब्यौरे पर डाली जाए तो बहुत आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान का रसूख तेजी से बढ़ रहा है और ये रसूख ईरान की तार्किक अप्रोच की वजह से है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के भारत दौरे की बात की जाए तो ये वर्तमान हालात में एक नए अध्याय की शुरुआत का इशारा देता है।
چگونگی توسعه تجارت بین هند و ایران تبادل نظر کنیم।
दिल्ली स्थित वरिष्ठ भारतीय पत्रकार मोहम्मद अहमद काजमी का कहना है कि दोनों देशों के रिश्ते पुराने हैं और कई मामलों में दोनों देशों की पॉलिसियों में बड़ा समन्वय है।
ईरान और हिंदुस्तान एक लंबे अरसे से तालीखी दोस्त और नजदीकी मुल्क रहे हैं और गुज़श्ता कुछ दहाइयों में कई मामलों पर एक जैसी फॉरेन पॉलिसी है और इस वक्त ताजा सूरत हाल में अफगानिस्तान पर दोनों मुल्कों का नजरिया एक ही जैसा है। वहां पर इंक्लूसिव हुकूमत हो और तालिबान की हुकूमत को अभी तक कबूल नहीं किया है। इसी तरह से यूक्रेन जंग के मामले में भी काफी हद तक ईरान और हिंदुस्तान की पॉलिसी तकरीबन एक जैसी है। दोनों मुल्क जंग बंद करने पर बातचीत पर दोनों मशवरा देते हैं, लेकिन अभी जो खास बात यह है वो ये कि ईरान एक लंबे अरसे से जिस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को आजादी से आगे बढ़ा रहा है, अभी पिछले कुछ महीनों से भारत के भी जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक तरह से एडजस्ट किया है नई सूरत हाल के साथ, खासतौर पर अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद।
Thank you. हालांकि मोहम्मद अहमद काजमी का कहना है कि अमरीका रिश्तों में रुकावट डालने की कोशिश करता रहा है। अमरीका कभी भी कामयाब हुआ और कभी कामयाब नहीं हुआ, मगर भारत दबाव से बाहर आने की अब कोशिश कर रहा है।
अमरीका के दबाव में हिंदुस्तान ने न सिर्फ ईरान से तेल लेना बंद किया, बल्कि उससे कुछ और बरसों पहले चला जाए तो जो ईरान पाकिस्तान भारत को जो गैस पाइपलाइन आने वाली थी उससे भी अमेरिका के दबाव में भारत ने अपने पैर वापस लिए थे। तो इस किस्म की सूरत हाल बनती है और अमेरिका भी बहुत ही गैर मामूली तरीके से शतुरमुर्ग जिसे कहते हैं उस तरह से वो चाल चलता है। अभी मैं मिसाल दे सकता हूँ दबाव की, जो अमेरिका से एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स दिलीप सिंह या दिलीप कुमार वो आए थे और उन्होंने जिस तरह से एक मिसाल मुहावरे के तौर पे मैं उर्दू का इस्तेमाल कर रहा हूँ दीदा दलेरी उन्होंने दिखाई और उन्होंने ये कहा कि अगर चीन की तरफ से किसी किस्म का भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो रूस भारत का साथ नहीं देगा, इसलिए भारत को चाहिए कि वो अमरीका के नजदीक रहे।
बहरहाल भारतीय मीडिया में एक खबर बड़ी प्रमुखता से ये छपी कि रूस और भारत के बीच हो रहे व्यापार में इस्लामी गणतंत्र ईरान एक बड़े खिलाड़ी की भूमिका निभाने जा रहा है। मीडिया में खबर आई कि ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी ने भारत और रूस के बीच नए ट्रेड रूट के जरिए माल पहुंचाकर इतिहास रच दिया है। कंपनी ने रूस से भारत तक माल पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC का इस्तेमाल किया। 7,200 किलोमीटर लंबे इस ट्रेड रूट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाईपास किया गया। अगर यही माल रूस से स्वेज नहर के जरिए भारत पहुंचता तो इसे 16,112 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। ऐसे में अगर ये व्यापार गलियारा एक्टिव हो गया तो न सिर्फ भारत और रूस के बीच ट्रेड में जबरदस्त इजाफा होगा बल्कि ईरान और कजाकिस्तान के साथ भी व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी की तेहरान यात्रा की बात की जाए तो ये यात्रा भी बड़ी महत्वपूर्ण रही और इसे पाकिस्तान के मीडिया में खास तौर पर कवरेज दी गई।
Another significant step towards strengthening our bilateral relations is the commitment to strengthening energy cooperation through the import of additional electricity from Iran. We have also discussed the possibility, the exchange of sentenced prisoners under the existing legal framework to allow them to complete their sentences in their respective countries. We appreciate Iran's hospitality and facilitate Pakistani pilgrims visiting Iran and have held useful discussions on creating additional facilities for these Zayarin.
पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनीतिक टीकाकार अली रजा अलवी इस यात्रा के कई पहलुओं की प्रगति की निशानदेही करते हैं।
ये एक खुशाइन दौरा है पाकिस्तान में, इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा थी। हालांकि जब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजारत खारजा में कलमदान संभाला है तो तभी से वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं, लेकिन जब ये बात अनाउंस हुई पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामी जमहूरिया ईरान के दौरे पर जा रहे हैं तो पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को बड़ी शासकियों के साथ और बड़े नुमाया तौर पर इसको नशर किया, इसको शाये किया और इसको भरपूर तरीके से लिफ्ट कराई। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को खसूसी अहमियत देती है। इसके पस मंजर एक ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी जब पाकिस्तान के सदर मुमलिकत थे तो उन्होंने आपके ईरानी हुकूमत के उस वक्त के अहमद नयाज से शायद या जो भी थे वहाँ उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से था। उन्होंने उस दौरे को वहाँ एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के हवाले से आपने पाइपलाइन भी बिछा दी ईरान ने अपने बॉर्डर तक, لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور پیپلز پارٹی ہی نے ہی یہ ایگریمنٹ کیا تھا. لیکن پیپلز پارٹی کے بعد جب عمران خان ادھر آئے اور میں نے عمران خان سے خود ایک انٹرویو میں پوچھا تھا کہ جناب یہ آپ گیس پائپ لائن منصوبے کو آگے لے کے بڑھیں گے, ان کے ابتدائی دن تھے, تو انہوں نے خود مجھے انٹرویو میں, وہ آن دا ریکارڈ انٹرویو ہے, مجھے خود عمران خان نے کہا تھا کہ میں اس منصوبے کو آگے لے کے چلوں گا, لیکن بدقسمتی سے وہ امریکی دباؤ کی وجہ سے وہ آگے نہ چل سکے اور انہوں نے اس کو ایک معمولی سے بھی کام نہیں کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے جس کے اوپر اگرچہ عمران خان الزام لگاتا ہے کہ یہ امریکہ کے تعاون سے آئی ہے اور امریکی سازش ہے, تو کیا یہ اس طرح کر پاتے ہیں کہ نہیں؟
وش درپن انتراشٹریہ گھٹنا کرموں کی نبض ٹٹول کر وش بھر میں ہونے والے پریورتنوں کی تہ تک جانے والا کارکرم وش درپن. ہر ہفتے سوموار کو
وینیزویلا کے راشٹرپتی نکولس مادورو کے تہران دورے پر نظر ڈالی جائے تو یہ دورہ دونوں دیشوں کے پرانے مضبوط رشتوں کو نئی مضبوطی دینے کی کامیاب کوشش نظر آتا ہے. 20 رڑنیتک سہیوگ کا سمجھوتا یہ بتاتا ہے کہ دونوں دیشوں نے آپسی سہیوگ کو بڑی بلندی پر لے جانے کا سنکلپ کیا ہے.
De los procesos de cooperación para el desarrollo que tenemos la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela.
دونوں ہی دیش ایسے ہیں جو امریکی سامراجیواد کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. ورشٹھ ٹیکاکار راشد عہد اس سندرب میں بات کرتے ہوئے پرتیرودھ اور ریزسٹنس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے مہتوپورن بندوؤں کو بیان کرتے ہیں.
جو مزاحمت اور جو سمجھ روش اور امریکی یعنی کہ جو روش ہے دنیا میں سامراجی روش, اس کو سمجھنے کی جو اس کے اندر صلاحیت ہے کیونکہ بہت رنگ ہے اور رہبر معظم نے جیسا کہ خود کہہ دیا اپنے ان سے گفتگو میں کہ بھائی مثلا کہ یعنی کہ مزاحمت اور استقامت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ میں اور ہم میں گویا کہ یعنی کہ مشترک ہے اور ہم دونوں نے اس کو فیس کیا ہے. اور کسی بھی رہبر مذہب نے ایک اصول بھی بتایا کہ کوئی بھی قوم جب مزاحمت اور استقامت سے کام لیتی ہے تو اس قوم اور اس قوم کے قائدین, اس قوم کے رہنماؤں دونوں کی عزت و عظمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس قوم کی عزت و عظمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک بہت ہی حقیقت ہے. تو وینزولا کی بڑی اہمیت ہے اور وہ امریکہ کے گویا کہ جیسے سامراجی قوت کے بالکل قریب میں ہے.
ان یاتراؤں اور دوپکشی سمبندھوں کو وستار دینے کے لیے ہونے والے انیہ دوروں پر نظر ڈالی جائے تو اندازہ لگانا کٹھن نہیں ہے کہ اسلامی گڑتنتر ایران کس پوزیشن میں ہے اور ایران کو الگ تھلگ کرنے کی امریکہ کی کوشش اور رڑنیتی کہاں پہنچی ہے. امریکہ نے ایران پر میکسیمم پریشر استعمال کرنے کی نیتی اپنائی تھی. امریکی گلیاروں کو امید تھی کہ اس سے ایران کی ارتھ ویوستھا چرمرا جائے گی اور آرتھک دردشا سے ناراض ہو کر جنتا سڑکوں پر نکل آئے گی اور اسلامی لوک تانترک ویوستھا کا ویرودھ کرے گی. مگر ایک بار پھر ایران کے بارے میں امریکی اندازہ غلط ثابت ہوا. جب سے ایران میں اسلامی کرانتی سفل ہوئی ہے اسی سمے سے امریکہ ایران کی اسلامی ویوستھا کے بارے میں غلط اندازے لگاتا ہے اور انہیں غلط اندازوں کو بنیاد بنا کر نیتیاں اور منصوبے بناتا ہے. نتیجتاً اسے بار بار منہ کی کھانی پڑتی ہے. اسلامی گڑتنتر ایران کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش میں دراصل امریکہ خود ہی الگ تھلگ پڑتا جا رہا ہے. اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ امریکہ کے گھٹک بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ پر بھروسہ کرنے والے اس بھروسے کے کارن اسے کوس رہے ہیں. شوتاؤ کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز. شوتاو ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. تازہ سماچاروں سے اوگت ہونے کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیں, پتہ ہے parstoday.com/hi. تو شوتاو ہماری سبھا کا انتم اور ساپتاہک کاریکرم پیش ہے صحت کا راز. صحت کا راز.
دوستوں کارکرم صحت کا راز کو لے کر اپستھت ہیں سواتی اور اختر عباس کا سلام سویکار کریں. آج کے کارکرم میں اسٹرابیری کے بارے میں چرچا کریں گے.
دوستوں آپ نے بہت سے پھلوں کے نام سنے ہوں گے, ان میں سے کچھ پھلوں کے ناموں اور ان کے لابھوں سے بھی آپ اوگت ہوں گے. آج ہم آپ کو ایک ایسے پھل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں وستار سے کم ہی لوگ جانتے ہیں. اس پھل کا نام اسٹرابیری ہے. اسٹرابیری کو ایک لوکپریہ پھل کے روپ میں جانا جاتا ہے. لگ بھگ دل جیسے آکار والا یہ پھل گہرے لال رنگ کا ہوتا ہے. اس کا اپنا جو وشیش سواد ہے اس کے کارن لوگ اسٹرابیری کو ادھک پسند کرتے ہیں.
विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान समय में विश्व में स्ट्रॉबेरी की 6,000 प्रकार की किस्में पाई जाती है. ये फल खाने में भी स्वादिष्ट होता है और देखने में भी अच्छा लगता है. स्ट्रॉबेरी को खाने के अतिरिक्त मिठाई, केक, जेली और आइसक्रीम बनाने में भी प्रयोग किया जाता है. कुछ देशों में इससे अलग अलग तरह के पकवान भी तैयार किए जाते हैं. कुछ लोग स्ट्रॉबेरी को सलाद में डालकर भी खाते हैं.
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسٹرابیری پوشک تتوں سے بھرپور ہوتی ہے, اسی لیے جہاں تک ہو سکے اس کا پریوگ کیا جائے. اسٹرابیری کے بھیتر پائے جانے والے تتو کئی پرکار کے کینسروں کو روکنے, رکت شرکرا کو نینترت کرنے, روگ پرتیرودھک شمتا کو بنائے رکھنے, بلڈ پریشر کو صحیح رکھنے اور دل کی بیماریوں سے سرکشت رکھنے اور پاچن کریا سمبندھی سمسیاؤں میں سہایک سدھ ہوتے ہیں.
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्ट्रॉबेरी का व्यापार 2.6 अरब डॉलर से भी अधिक का होता है. स्ट्रॉबेरी को निर्यात करने वाले देशों में अमेरिका, स्पेन, मैक्सिको, हॉलैंड और चीन का नाम शामिल है. विश्व खाद्य परिषद की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार चीन प्रतिवर्ष 37,93,000 टन स्ट्रॉबेरी पैदा करने वाला दुनिया का पहला देश है. इस प्रकार से स्ट्रॉबेरी के उत्पादन में चीन दुनिया में सबसे ऊपर है. चीन के बाद स्ट्रॉबेरी पैदा करने वाला देश अमेरिका है, जबकि तीसरे नंबर पर मैक्सिको है.
ईरान में भी व्यापक स्तर पर स्ट्रॉबेरी पैदा की जाती है. ईरान के पश्चिम में स्थित कुर्दिस्तान में सबसे अधिक स्ट्रॉबेरी की पैदावार होती है. पूरे ईरान में जितनी भी स्ट्रॉबेरी की पैदावार है उसमें से 80% केवल कुर्दिस्तान में पैदा की जाती है. کردستان کے پشچات ایران کا اتری پرانت مازندران اس کی پیداوار میں دوسرے نمبر پر آتا ہے. وہاں پر جنگلی اسٹرابیری بھی پائی جاتی ہے. ایران سے اسٹرابیری کا نریات روس, عراق اور فارس کی کھاڑی کے دیشوں کے لیے کیا جاتا ہے.
स्ट्रॉबेरी ऐसा फल है जिसके जंगली पौधे ईरान के उत्तरी और पश्चिमोत्तर में बहुतायत से पाए जाते हैं. हालांकि ईरान में अलग अलग प्रजातियों की स्ट्रॉबेरी को बोने का चलन है. वनस्पति के रूप में दिखने वाले स्ट्रॉबेरी का फल का तना दो प्रकार का होता है, एक सीधा, दूसरा थोड़ा सा मुड़ा हुआ. इसके जिस फल का तना सीधा होता है उसकी लंबाई 8 से 15 सेंटीमीटर तक होती है. इसके पत्ते कटावदार होते हैं जो गहरे हरे रंग के होते हैं. स्ट्रॉबेरी के फूल सामान्यतः सफेद रंग के गुच्छे के रूप में होते हैं. स्ट्रॉबेरी पर एक प्रकार का हरे रंग का कवर होता है जो आरंभ में इस फल को छिपाए रखता है और इसके बड़े होकर पकने की स्थिति में उसी से वह चिपका रहता है. यह फल बहुत ही स्वादिष्ट, शक्तिवर्धक, भूख लगाने वाला, आराम देने वाला और विटामिनों से भरपूर होता है। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि स्ट्रॉबेरी की हजारों किस्में हैं, किंतु मुख्य रूप से इनको तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला जून बियरिंग स्ट्रॉबेरी, यह सबसे अधिक लोकप्रिय स्ट्रॉबेरी है। दूसरा एवर बियरिंग स्ट्रॉबेरी, अपने नाम की तरह से यह सदाबहार नहीं होती बल्कि इसकी फसल जून के महीने में ही तैयार होती है। और तीसरा है डे न्यूट्रल स्ट्रॉबेरी, इसको सबसे स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी माना जाता है।
स्ट्रॉबेरी ऐसा फल है जिसके पत्तों, जड़ों और डंठलों में उपचारिक विशेषताएं पाई जाती हैं। स्ट्रॉबेरी भूख लगाने और मस्तिष्क को आराम पहुंचाने के साथ ही साथ कब्ज को दूर करने में भी सहायक सिद्ध होती है। पुराने कब्ज को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको खाने से बदन को कैल्शियम, लौह, फॉस्फोरस और विटामिन सी प्राप्त होती है जो शरीर के लिए लाभदायक है। स्ट्रॉबेरी में एंथोसियनिन पाया जाता है जो इसके रंग के लाल होने का कारण है। ये बदन के खून के दौरान के सिस्टम की सुरक्षा करता है। इस प्रकार से ये खून के थक्के बनने में बाधा बनता है। इसी प्रकार से ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। स्ट्रॉबेरी में उच्च मात्रा में पेक्टिन फाइबर पाया जाता है। ये LDL को नियंत्रित करता है। स्ट्रॉबेरी पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। ये दोनों ही तत्व ब्लड प्रेशर के लिए लाभदायक हैं। इस फल में एलर्जिक एसिड पाया जाता है। अन्य एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिलकर ये खाने को पचाने में मदद करता है और खून की शर्करा के स्तर को बढ़ने से रोकता है। शुगर का शिकार लोगों के लिए ये मौका देता है कि वे शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर सकें। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी और फाइबर भी मौजूद है। इसबगोल कैंसर से सुरक्षित रखने में भी ये मददगार है। फल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण और पॉलीफेनोल कंपाउंड पाए जाते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं। इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी त्वचा की रक्षा करने के साथ ही साथ बालों को भी मजबूत रखता है। कहते हैं कि यदि कोई अपनी त्वचा को सुंदर बनाए रखना चाहता है तो उसको स्ट्रॉबेरी का प्रयोग करते रहना चाहिए। स्ट्रॉबेरी में पाए जाने वाले एसिड से त्वचा के काले धब्बे हट जाते हैं और त्वचा बेदाग हो जाती है।
इसमें विटामिन सी के पाए जाने के कारण यह शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। यह उन लोगों के रक्त सर्कुलेशन को भी कंट्रोल में रखता है जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं। स्ट्रॉबेरी में विटामिन के, कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती है। आयु के बढ़ने के साथ ही साथ लोगों की हड्डियां कमजोर होने लगती है और ऐसे में स्ट्रॉबेरी का सेवन लाभदायक सिद्ध होता है। कुछ जानकारों का कहना है कि आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी इस फल की उल्लेखनीय भूमिका है। स्ट्रॉबेरी पाचन क्रिया को सरल बनाती है, इसीलिए इसके प्रयोग से पेट संबंधी और जिगर से संबंधित परेशानियां दूर होती है। स्ट्रॉबेरी के भीतर विटामिन, फाइबर की मात्रा बहुत होती है। इसमें अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जिनको पॉलीफेनॉल्स कहा जाता है।
स्ट्रॉबेरी में सोडियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल आदि नहीं होता, इसीलिए इसको लो कैलोरी माना जाता है। इसके फायदे को देखते हुए डॉक्टरों का कहना है कि स्ट्रॉबेरी के मौसम में मनुष्य को इस फल का प्रयोग करते रहना चाहिए क्योंकि ये शुगर जैसी बीमारी से छुटकारा दिला सकती है और दिल की बीमारियों को होने से रोकती है। हालांकि स्ट्रॉबेरी का प्रयोग अधिक मात्रा में हानिकारक होता है। स्ट्रॉबेरी के पत्ते कब्ज को दूर करते हैं। इसके सूखे पत्तों को दम करके चाय के रूप में पिया जाता है जो मूत्राशय को सक्रिय करने का काम करते हैं। स्ट्रॉबेरी में कभी कभी धूल या मिट्टी मिल जाती, इसीलिए इसको प्रयोग करने से पहले खूब अच्छी तरह से पानी में भिगोकर धोना चाहिए।
दोस्तों अंत में आपको ये भी बता दें कि इतने अधिक फायदे होने के बावजूद स्ट्रॉबेरी कुछ लोगों के लिए लाभदायक नहीं है बल्कि हानिकारक हो सकती है। ऐसे में इसके प्रयोग से पहले कुछ बातों का जान लेना बहुत ही जरूरी है। वे लोग जिनको किसी भी प्रकार की एलर्जी है या जिनका मेदा बहुत ही संवेदनशील है, ऐसे लोगों को स्ट्रॉबेरी खाने से बचना चाहिए, विशेषकर जिन्हें एक्जिमा, अस्थमा या छोटे दाने निकलने की बीमारी हो।
तो दोस्तों कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अख्तर रिजवी और स्वाति को इजाजत दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत का राज। और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे में आतंकवादी हमला करने वाले को आज मृत्युदंड दे दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ सुधार आरंभ में खराब लगते हैं। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार भेजकर अमेरिका अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। इथियोपिया में 230 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई। श्रोतो हमारा ये कार्यक्रम आपने शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुना। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आया होगा। ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट देखना न भूलें, पता है parstoday.com/hi। तो श्रोताओ इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज, शुभरात्रि। Thank you.